आप इमेजिनेशन में लाइए कि एक बहुत अमीर शख्स है, करोड़पति है, उसके सामने एक दूसरा शख्स आता है और वो भी क्या कहता है, मैं भी कि तुमसे कम नहीं हूं। वो अपने गुण गाता है, वो जवाब में अपने गुण गाएगा। ये बताइए कि ये दूसरा शख्स जो एक बहुत बड़े अमीर शख्स के सामने जाके खुद को काफी अमीर पेश करता है, क्या इसको उस पहले शख्स से कुछ मिलेगा? वो कहेगा मैं इसको क्यों दूं, ये तो खुद ही बहुत कुछ रखता है और इसका ख्याल है, इसको जरूरत ही नहीं मेरी। अब दूसरी सूरत ये कि एक शख्स है जो बहुत बड़ा है, उसको अल्लाह ने दुनिया की चीजें भी दी हैं, सब कुछ दिया। अब दूसरा शख्स उसके पास जाके मिस्कीन और फकीर बन के बैठ जाता है और उसको एहसास होता है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, हाय इसके पास पता नहीं खाना भी है कि नहीं, इसके पास सेहत भी नहीं, तो वो उसको देगा कि नहीं देगा? वो कहेगा मेरे पास तो इतना, तो इसको मैं अपने में से थोड़ा सा दे दूंगा तो क्या होगा? बस इस मिसाल को समझे, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा वल्लाहु वल गनीयुल हमीद। सूरह फातिर में अल्लाह तआला कहते हैं लोगों तुम सब फकीर हो, मस्कीन हो, बेगर्स हो, और तुम्हारा रब जो है वो गनी है। गनी उसको कहते हैं जिसको किसी की जरूरत ही नहीं है, दौलतमंद। तुम मोहताज हो, तो अल्लाह के सामने जितने आजिज होके जाएंगे ना, जितने झुके जाएंगे अल्लाह से उतना पाएंगे। लेकिन जो इंसान अपनी बड़ाई के एहसास में मगन होता है उसको अल्लाह से भी कुछ नहीं मिलता। अब होता क्या है कि जब अल्लाह की बड़ाई दिल में आती है ना, तो बास दफा लोग क्या सोचने लगते हैं, अल्लाह तो बहुत बड़ी जात है और मैं इतना छोटा, तो मेरा तो अल्लाह के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक ही नहीं हो सकता। जैसे दुनिया में हम कहें कि सदर ओबामा से हम डायरेक्ट फोन पे बात करें तो आप कहेंगे छोटा मुंह बड़ी बात, वो आपसे बात क्यों करेगा? ऐसी है ना, लोग क्यास करते हैं, गुमान करते हैं, जन है, तो क्या कहते हैं कि चूंकि हम बहुत छोटे हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, तो लिहाजा हमारे और अल्लाह के बीच में कोई ऐसा ताल्लुक होना चाहिए जो हमें उससे मिला दे। बात समझे? और फिर मिसालें क्या देते हैं कि जैसे बादशाह के पास पहुंचने के लिए दरबारियों की जरूरत होती है, छत पे जाने से के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है, तो अल्लाह ताला कहते हैं वमा यत्तबीउल्लज़ीन यदून मिन दूनिल्लाही शुरका, और नहीं वो पैरवी करते जो लोग पुकारते हैं अल्लाह के सिवा शरीकों को, ई यत्तबीउन इल्लज़न्ना, नहीं वो पैरवी कर रहे मगर गुमान की, वइन्हुमिल्ला यखरुसून, और वो सिर्फ अटकल करते हैं। इन दो तीन जुमलों में अल्लाह ताला ने लोगों की सोच का राज खोल दिया कि लोग कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे और अल्लाह के बीच में एक ताल्लुक है और हमें इनको खुश करना है और ये हमें हमें अल्लाह ताला से लेकर देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ये सिर्फ जन है, और जन किसको कहते हैं? गुमान, अजम्पशन। आप खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा भाई अगर मुझे किसी से कुछ लेना है तो उसके लिए बीच में मुझे कोई वकील तो करना ही पड़ेगा, या कोई बीच में कोई थर्ड मैन कोई होगा, कोई ब्रोकर तो होगा, घर खरीदना है तो कोई रियल एस्टेट वाला तो बीच में आएगा। ये तो दुनियादारी के खेल है ना, क्या अल्लाह के साथ हमारा ये मामला हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तो खुद कहता है कि वैजा साला कई बात अन्नी फनी करीब, जब मेरे बारे में आपसे मेरे बंद आपसे पूछे मेरे बारे में, कह दे मैं करीब हूँ। उजीब उदा वतदा ईजादान, मैं कबूल करता हूँ दा पुकारने वाले की पुकार का जबकि वो मुझे पुकारता। करो क्या? वल यस्तजी बोली, बस तुम भी तो कबूल करो। वल यू मिनू भी, फिर मेरे पर ईमान तो लाओ। वल यस्तजी बोली वल यू मिनू भी लल्लहुम यरशुदून, ताकि तुम फला पाओ। तो अल्लाह करीब है। इससे पिछले सेशन में हमने वसीले पे बहुत डिटेल से बात की है, जो साथी आज इधर है, कल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो दर्ज था इसी सीरीज का जुमे में मस्जिद और बस में सिर्फ लफ्ज वसीले पे बात हुई थी, और ये इसी सीरीज के अंदर आप बाद में सुनना चाहेंगे तो ऑडियोज में से सुन लें। आज हम इन आयात की रोशनी में देखेंगे कि यहाँ जो लफ्ज आया कि अला इन औलिया अल्लाह ही, तो विलायत का क्या लफ्ज है और आज के दौर में इसको किस तरह यूज किया गया और किस तरह इसको मिसकॉन्सेप्ट किया गया। क्या वलीउल्लाह कोई नहीं होता? बिल्कुल होते हैं। क्या वलीउल्लाह सब कुछ होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। देखिए दो एक्सट्रीम्स है, एक कहते हैं वलीउल्लाह कोई होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कुरान कह रहे इन औलिया अल्लाह ही, और लफ्ज औलिया और वलीउल्लाह का लफ्ज अगर आप देखें, लफ्ज वली जो है ना वो किस से, कुरान में अगर आप लफ्ज वाव लाम या डालकर देख लें तो आपको इस रूट से शुरू होने वाले अल्फाज मिल जाएंगे। इस लफ्ज से कुरान पाक में 231 बार ये लफ्ज मुख्तलिफ तरह से आया। लफ्ज वली बहुत ही वसीउल मानी लफ्ज है, हम उस इस वक्त सारे को तो नहीं करेंगे, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह तला ने इस लफ्ज को मुख्तलिफ सेंसेज में जो यूज किया है उसमें एक तो अल्लाह ताला का अपना नाम अलवली है। ये अब आप छोटी छोटी बातें अगर नोट करेंगे फिर ही याद रहेंगी, खाली सुनने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, इल्ला ये कि आपको वक्ती तौर पे फायदा हो और बाद में आप फिर भूल जाए। क्योंकि हमारे असलाफ जो थे वो लिखने पे बहुत जोर देते थे। किसी एक इमाम के बारे में मैं सुन रही थी तो उनकी नानी जो थी वो भी बैठी किसी महफिल में सुन रही थी, और ये भी इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो जो बूढ़ी नानी या दादी थी कहने लगी तुम लिखने पे क्यों जोर देते हो, सुनो। तो उन्होंने कहा कि मैं सुन तो लूंगा लेकिन मुझे शायद याद ना रहे। तो कहने लगी लो मैं तुम्हें सुना देती हूँ, क्या सुना? तो वो कहने लगे कि अच्छा सुनाओ। वाकई उन्होंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो बात थी वो सुना दी। जब सुना दी पूरी बात तो कहने लगी देखा सारी चीजें तो मेरे हाफ़िज़े में, तुम्हें लिखने का क्या फायदा होगा। खैर थोड़ी देर गुजर गई। जब शाम हुई तो कहने लगे दादी से, दादी इधर आओ, वो जो सुबह सुना था मुझे सुनाओ। तो आधी बातें वो भूल चुकी थी। तो उन्होंने कहा हम इसलिए लिखते हैं कि फिर हम भूलते नहीं हैं। तो याद रखिए लिखे बगैर तालिब इल्म तो तालिब इल्म नहीं बनता, और हम थोड़ी देर के तालिब इल्म बन जाए अल्लाह शायद हमें खैर टाल दे, इल्म के कुछ मोती हमें भी मिल जाए। बातों का क्या, मैं जितनी मर्जी लच्छेदार और खूबसूरत और मजे की बातें सुना के आपको चली भी जाऊंगी वो बातें ही रह जाएंगी। बाद में आप यही कहेंगे ज्यादा से ज्यादा बड़ा अच्छा दर्स था, लेकिन उसके बाद कहा क्या था उसमें से कोई दो चार जुमले याद रहते हैं इधर ना उधर के, बस कुछ वो न सर न पाऊं। तो लिखने से फायदा होता है। जो हमारे असलाफ थे वो कहा करते थे औराकुना, हमारे वरक अहब्बु, हमें उसी तरह प्यारे हैं जैसे औलादुना, हमें अपनी कापियां हमारे नोट्स अपने बच्चों की तरह प्यारे होते हैं। तो आइए थोड़ा सा लफ्ज़ वली और विलायत को हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखते हैं और इसमें से चीज़ों को नोट करते हैं कि आखिर इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन जो सवाल की सूरत में आपके सामने रख लेती हूँ, और वो क्या है कि वली कहते किसको है। अगर आप देखें तो लफ्ज़ वली वाओ लाम या से है, और वली का लफ्ज़ अल्लाह सुबहान तआला के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और इंसानों के लिए भी हुआ है। अल्लाह ने खुद फरमाया कि अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, कहाँ है आपको याद है? अब रेफरेंसेस सारे लिखाऊंगी तो बात बहुत बोझल हो जाएगी। हालांकि सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी के फौरन बाद की आयतों में अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वालों का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वली का लफ्ज़ कुरान पाक में दो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। एक क्या है, वली का लफ्ज़ अल्लाह के लिए, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि अल्लाह अल वली है। अब जब अल्लाह सुब्हान तआला अल वली है तो अब हमें कैसे पता चले कि जब अल्लाह को हम अल वली कहते हैं तो फिर उससे क्या मुराद है? तो इसके लिए आप लोग अल्लाह ताला के जो असमाल हुस्ना है उसके बारे में आप देख सकते हैं। अगर वेबसाइट पे आप लोगों ने कभी नहीं सुना तो मैं आपको लिंक दिखा देती हूँ कि जिसमें आपको अल्लाह ताला के नामों के बारे में इल्म मिलता है। ये देखिए, ये नूरुल कुरान वेबसाइट है, इसके बीच में ऑडियोज को अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको शॉर्ट कोर्सेज में नीचे ही असमाल हुस्ना के नाम की एक सीरीज दिखेगी। ये पहले ही है, इधर से भी और एक और वेबसाइट पे तो मेन पेज पे भी मिल जाएगी। मैं सिर्फ आपको नाम का एक्सेस दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये अल्लाह ताला के नाम है ना, मुख्तलिफ नामों की डिस्क्रिप्शन है। इसमें से आप अल वली ढूंढ लें और बाद में जाके उसकी डिटेल सुन लें, क्योंकि जब अल्लाह के नाम अल वली को अल्लाह के नाम के नाते से सुन लेते हैं तो बहुत सारे मसले वहीं हल होते हैं। हमने जब अल्लाह सुबहाना ताला की सिफात को दूसरे इंसानों में ढूंढना और पाना शुरू कर दिया तो जिसकी वजह से हमारे अंदर भी बहुत सारी खराबियां आ गई। तो ये अल्लाह के नामों में से आप अलवली की तफसीर सुनेंगे तो आपको ये बात वाजे हो जाएगी। दूसरा, वली का लफ्ज जो है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी आपके सामने सूरह यूनुस की आयत 62 और ऑनवर्ड रख दी कि वली से मुराद इंसानों में भी कोई वली हो सकता है। ठीक है, अब अल्लाह वाली बात तो हम थोड़ी सी पीछे कर देते हैं। जब इंसानों में आप किसी को वली कहते हैं तो क्या मतलब है? तो नोट कीजिएगा, विलायत का लफ्ज़ सुने अपने उर्दू में? विलायत क्या होती है? बादशाहत, किसी के अंदर आना। वली वो शख्स है जिसकी हिफाजत की जाए, यानी जब आप किसी को वली कहेंगे और साथ अगर वली उल्लाह कह देते हैं तो मुराद है कि वो इंसान जिसकी हिफाजत अल्लाह ने की। बात वाज़ है, क्योंकि अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनु दोस्ती के मानों में भी ये लफ्ज़ है। तो अब आप देखिए कि जब बंदों के लिए वली का लफ्ज आता है तो किस चीज की हिफाजत हो? नंबर एक, वलीउल्लाह वो होता है जिसके ईमान की अल्लाह हिफाजत करता है, यानी अल्लाह ताला उसके ईमान को बिगड़ने से, उसके ईमान में रखने डलने से बचा लेता है। फिर दूसरी बात क्या है कि उसके अकायद की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है, यानी उसके अकीदे में कहीं कोई लूप होल नहीं रहता। वो अल्लाह की तरफ बुलाते बुलाते कहीं लोगों को खुद की तरफ नहीं बुलाने लगता। ठीक है, बात वाज़े। यानी उसके ईमान में और उसके अकीदे में कुछ खलल नहीं होता और अल्लाह सुब्हान तआला उसकी हिफाजत करते हैं। तीसरी चीज जो वली में हिफाजत की है कि वो अपनी नेकियों की, आमाले सालिया की हिफाजत करता है। ठीक है, यानी आप आसान लफ्जों में कह लें कि जो बाअमल मुसलमान होता है। बात वाज़े। अकीदे की खराबी आ गई, ईमान में खलल हो गया या किसी अमल में कमी हो गई तो वो वली नहीं रहेगा। मिसाल देती हूँ, ईमान में खराबी कैसे हो सकती है कि वो कहता है कि हाँ अल्लाह पर ईमान तो है मेरा, लेकिन इसके साथ साथ मैं किसी बुत को भी पूछना चाहता हूँ, या मैं किसी और की भी ऊपर भी ईमान लाता हूँ। ठीक है, या अल्लाह पर ईमान तो लाता हूँ लेकिन तकदीर पे ईमान नहीं लाता। आपको पता ना ईमान की जो 6 शिखे हैं, वो कहते हैं सब कुछ ठीक है अल्लाह पर ईमान का, लेकिन मैं फरिश्तों पे ईमान नहीं लाता। यानी ईमान के वो जो 6 बुनियादी अरकान है, इसी सीरीज में हम शुरू में कर भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो किसी एक चीज में ईमान में पीछे है। आप पढ़ते हैं ना कि ईमान, ईमान मुफस्सल क्या लफ्ज बचपन से सुनते हैं, कुतुब ही व रसुल ही व, इनमें से किसी चीज में वलीउल्लाह के कमी नहीं हो सकती। फिर अकीदा उसका ठीक कैसे होता है? अकीदे की वो सारी बारीकियां जिस पे हमारे दीन इस्लाम की बुनियाद खड़ी है। अफसोस की बात यह कि आज जब इल्म से ताल्लुक कटा तो अमल साले बहुत, फजाइल अमल के बहुत, अकीदे में खामी है। और अकीदा ऐसा है कि जैसे किसी दरख्त की जड़ें हैं, जब जड़ में कीड़ा लग जाता है ना तो आप देखते हैं कि उस दरख्त के सेब में भी कीड़ा पड़ जाता है। आज हुआ क्या हम मुसलमानों के साथ अमूमी तौर पर कि जब इल्म से कटे तो हमें तो अपने मालिक का ही नहीं पता। अगर मैं भी सिर्फ 4-6 सवाल पूछ लूँ ना माशाल्लाह आप सबसे जो इल्मी लोग हैं, तो आपको एकदम पसीना आने लगेगा कि अच्छा ये भी होता है। शुरू से ला इलाहा ही पूछ लूँ, मैं अक्सर लोगों से यही पूछती हूँ कि ये बताएं कि ये जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं इसकी शरायत है कितनी और क्या है। मैंने जहां पूछा मैं मायूस हो गई। पहली दफा तो मैं जिसको कहना चाहिए कि सत्ते में आ गई कि हम सारी जिंदगी से कलमा पढ़ रहे हैं तो इसकी शरायत क्या है, नहीं पता। हालांकि इसी सीरीज के शुरू में हमने एक सेशन में की अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा पढ़ते हैं सुबह ला इलाहा इल्लल्लाह, 1.25 लाख ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, उसकी जो शरायत है वो पता ही नहीं है। कोई कह दे, कहते अच्छा हाँ ये तो ऐसे तो हो ही गए। तो याद रखिए, इल्म का पानी ना मिले तो बड़े बड़े सरसब्ज दरख्त हैं वो सूख जाते हैं, और जड़ सूखी हो तो ऊपर पत्तों पे आप जितना मर्जी पानी फेंके, आप उसके ऊपर खाद मले, फायदा नहीं होता। ये जो आज हमारे यहाँ एक कल्चर चल गया ना, अमाल करो, अमल करो, अमल करो, वजीफे करो, सारे बैठो 10 कुरान पढ़ लो, सारे बैठो दुरूद इतनी दफा पढ़ लो, इतने ये कर लो, ये ऊपर के पत्तों को सजाते हैं। या बहुत अब एक शौक चढ़ा हमें तो वो क्या कि हम अपना जी अपना तस्किया कर लें। यानी एक जो बात अब बहुत ही सुनने में आ रही है कि पहले जी अपनी इसलाह कर लें दिल की। जैसे किसी से बात हुई तो मैंने कहा आपके हस्बैंड, कहती बहुत नेक है। मैंने कहा अच्छा, खैर बात हो रही थी किसी मौजू पे तो मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि आपके हस्बैंड 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? कहती पढ़ते हैं। मैंने कहा मस्जिद में जाके पढ़ते हैं? कहती नहीं पढ़ते। मैंने कहा वक्त पे कर पढ़ते हैं? कहती नहीं, इकट्ठी पढ़ते हैं, सुबह की तो लेट होती है। फिर 2-4 और बातें की, मैंने कहा कि मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन जो आप मेरे से बहस कर रही हैं कि आपके हस्बैंड का ख्याल है कि वो तो बहुत ज्यादा तज़किया के लेवलों पे ऊपर पहुंच चुके हैं, वो कुछ से सूफीज्म से मारूफ थे या उनसे कुछ मशहूर, उनका थोड़ा सा इल्मेलान था। तो मैंने कहा कि वो 5 वक्त नमाज क्यों नहीं पढ़ते जमात में? कहती वो कहते हैं अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा, अभी मैं 10 साल हो गए इस प्रोसेस में तज़किए के और दिल की इसलाह के, 10 साल हो गए, उसने खुद बताया, लेकिन ये कि अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा, तो जब मैं पहुंचूंगा फिर मैं रखूंगा। मैंने कहा अच्छा दाढ़ी है आपके हस्बैंड की? कहती नहीं। यदि आप क्वेश्चन, ये मैं सिर्फ आपको मिसालें क्यों दे रही हूँ कि आज उम्मत किधर जा रही है। बगैर जड़ों के आप जमीन के ऊपर एक दरख्त रखें कितना को आगे जाएगा? एक हवा का हुलारा आता गिर जाता है। आज हम इस्लाम के नाम पे एक हल्की सी हवा चलती है तो हम गिर क्यों जाते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग क्यों हो जाते हैं, अपने दीन के अंदर इतना शर्मिंदा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अंदर जड़ें कच्ची हैं। जिसके दिल में अकीदा पुख्ता होगा ना, वो तो फिर उमर बन जाता है। आओ फिर मारो मेरे सामने, करो बात। हाँ तुम्हें गुस्सा आता मेरे इस्लाम आने पर? जब हजरत उमर मुसलमान हुए तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त की जरूरत के तहत कहा कि उमर अपने इस्लाम को छुपा लेना, जिक्र ना करना, क्योंकि आज अभी हम थोड़े हैं और इतने थोड़ों ने अगर दुश्मनी ले ली सारे माशरे से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हजरत उमर कहाँ डरे, दिल में सोचते हैं कि मेरे इस्लाम लाने का सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? अबू जहल को होगा, जो दोस्त है इनका। सीधा वहां से निकलकर अबू जहल के दरवाजे पे आके उसके दरवाजे को अपनी तलवार की नोक से नोक करते हैं। कट कट कट, देखो उमर बिन खत्ताब क्या हाल है, कैसे हो? कहने लगे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलल्लाह। इतने जोश से कहा कि अबू जहल सटपटा गया और दरवाजा बंद करके अंदर खड़ा हो गया। ये कीदे की पुख्तगी है। मैं कहती हूँ अब तो मेरा दिल करता है सिर्फ मैं लोगों को कीदा पढ़ाऊं। ये अल्लाह की जो बेकदरी हम करते हैं ना, ये जो हमने अपनी जिंदगियों को रोग लगाए हुए ना, और ये चार पैसों की दुनिया के पीछे मर मर जाते हैं, और चार बच्चे जो अल्लाह ने हमें दे क्या दिए, ऐसे लगता है बस ये चार बच्चे ही बचेंगे तो हम जिंदा हैं वरना हम मर जाएंगे। हमारी जिंदगी को तो वो मकसद नजर ही नहीं, टच भी नहीं की हमने वो चीज जो नबी की जिंदगी का मिशन था। तो याद रखिए अकीदे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसी है कि शादी होने से पहले पता होता है लड़की को कि शादी किसको कहते हैं, निकाह भी क्या मर्द और औरत के बीच में एक अकद है ना। शादी हो जाए और लड़की को अपने शौहर की हदें ना पता हो और शौहर को बीवी की बातें ना पता हो तो वो क्या एक साथ रह सकते हैं? लड़ लड़ के मर जाएंगे। अल्लाह के बारे में बंदे को जानना ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इल्म है। आपको पता है असमाउ सिफात का इल्म, हमारे असलाफ कहते थे कि सबसे बेहतरीन इल्म अल्लाह के बारे में जानो, फिर उसकी किताब के बारे में जानो। आप बड़े से बड़े मुफ्ती बन जाएं, आप बड़े से बड़े मुबल्लिग बन जाएं, आप सूफी कहलवाएं, शेख साहब कहलवाएं, आप जाकिरीन में नाम लिखा लें, अगर आप अल्लाह और उसके कुरान के बारे में, किताब के बारे में नहीं जानते तो आपको हक नहीं है बात करने का। तो लिहाजा ये ज़रूरी है। तो जब किसी को वलीउल्लाह कहेंगे तो पहले देखेंगे उसके अकायद ठीक है, शिर्क तो नहीं है, वो ऐसे मामला तो नहीं करता। फिर तीसरी चीज़ देखिए ज़रूरी अमल सवाले, आमाल करता कि नहीं करता। इसकी तो रिसेंटली किसी साथी से बात हो रही थी, किसी ने ऐसे अपना तजुर्बा शेयर किया कि उनको शक हुआ कि उन पे कोई सहर है, तो वो इलाज के लिए किसी जगह किसी के कहने पे पहुंच गई। कहती वहां गई तो थोड़ी देर हुई तो नमाज का वक्त हो गया, तो नमाज का वक्त और थी भी शायद मगरिब की नमाज, तो मैंने कहा हमने नमाज पढ़नी है, साथ और भी लोग थे, उन्होंने कहा उधर जाके अंदर पढ़ ले। कहती वो खुद बैठे हुए थे जो बकौल उन लोगों के जिन्होंने उनको भेजा होगा कि वो इनका इलाज करेंगे, तो कहती जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नमाज की जरूरत नहीं है वल्लाही। कहती ये सुन के अल्लाह ने हमें बचा लिया, हम तो वहां से उठ के आगे कि जब बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसको के? और मैंने अपनी आंखों से देखा कह लें या मैंने करीब से देखा कि जो किसी ऐसे ही बच्ची का इलाज करने आए किसी के घर में रमजान में और उनके सामने पूरी ट्रॉली बन के गई, क्या हुआ पीर साहब ने रोजा नहीं रखा? कहते नहीं ये रोजा, इनको रोजे की जरूरत नहीं है। अब आप बताइए मुझे कि आप और मैं क्या ऐसे लोगों से जब ऐसी बातें लेने जाएंगे तो क्या हम उनको वलीउल्लाह या पहुंचे हुए या बुजुर्ग या नेक साहब कह सकते हैं? तो वली के लफ्ज को रट के जाइएगा आज, उसके ईमान की, उसके अकीदे की और उसके अमल सवाले की अल्लाह हिफाजत करता है। ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रख देता है, और जिसको अल्लाह अपनी हिफाजत में ले ले फिर उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। चौथी शर्त किसी के वलीउल्लाह होने की क्या है, उसे यकीन होता है कि अल्लाह ना चाहे तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसको आप कह सकते हैं कि अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुतिया लिमा मनात वला यनफौजल जद्दी मिन कल जात। अल्लाह कोई रोक नहीं सकता अगर तू दे दे कोई चीज, और अगर तू ना देना चाहे तो कोई दे ही नहीं सकता मुझे, है सही? आप औलाद मांगे, अल्लाह ना देना चाहे तो कोई देगा आपको? और अगर सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, काबा का पर्दा पकड़ के आपके खिलाफ जाके वहां बददुआएं मांग के आए, अल्लाह ने आपको कोई खैर देनी है तो दे देनी है। सारे माँ बाप की मिन कोशिशें पीछे रह जाती हैं, अल्लाह औलाद को फिर गम दे देता है। यतीम बच्चों का अल्लाह ऐसा वारिस होता है कि उनको दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें दे देता है। ये यकीन होगा तो वलीउल्लाह बनेंगे कि जब मेरा रब मुझे कुछ देना चाहता है तो मुझसे कोई ले नहीं सकता, और रब ना देना चाहे तो मिन्नतें मुरादे कर लो, चिल्ले काट लो, वजीफे कर लो, हज कर लो, उम्रे कर लो, अल्लाह ना देना चाहे तुम्हें नहीं मिलना। माँ बाप की गोदों में से बच्चे जो हैं वो बीमार होके निकल जाते हैं, और बगैर माँ के बच्चे पल पुल के बड़े सेहतमंद हो जाते हैं।